90,000 आ गया। कभी दुकान नहीं चल रही, कभी कुछ, हम एक रास्ते में चल रहे हैं, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, बेटे चल रहे हैं और लड़कियां चल रही हैं किधर, पेशावर की तरफ, रावलपिंडी की तरफ में चल रही हैं। कोई हमारा बाप या भाई है, वो स्त्री है, उधर में चल रही है। मन ही नहीं मिलता किसी का, एक में ये सब ताप है कि नहीं? कितने संसार तरह के वांस सब है ये सब। वृद्ध हो रहा हूं क्रमशः, एक एक पल क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? मरण की तरफ में जा रहे हैं, इसलिए विफल ही हमारा जन्म सब जा रहा है। क्या है ब्रजेंद्रनंदन जी? सचिसुत हैला से ही बलराम हैलो निकाले। ब्रजेंद्रनंदन है वही अब श्याम ये गौरचंद्र बने हैं, और नित्यानंद प्रभु है वो कौन है? ये बलदेव जी से हुए हैं। इसलिए कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण समझो और अब इनका भजन करो, यहीं से आरंभ करो। बड़े दानी है, अपराध इत्यादि का विचार इनके नाम। फिर क्या है, उन्होंने दीनहीन जितने थे हमारे जैसे सबको उद्धार किया, बस केवल मैं बचा हूँ, हमारा अभी तक उद्धार नहीं। क्यों? मैं जगाई मधाई से भी घृणित हूँ। देखो, जगाई माधा जैसे पाषंडों को उद्धार कर दिया एक दिव्य दृष्टि से देखकर, और मैं आज इतने दिन तक हूँ, हमारे ऊपर में कृपा नहीं, मैं जगाई मधाई से भी अत्यंत घृणित हूँ। हाँ प्रभु नंदसुत, हाँ प्रभु नंदसुत वृषभानु सुताजूत, महाप्रभु जी की वंदना कर रहे हैं। हे नंद नंदन, किंतु विश्वभानु सुता के साथ जूता जूत मने संयुक्त होकर के आप तो कृष्ण हैं, किंतु राधा जी को भी अपने में रख लिया है। आप हमारे ऊपर में करुणा करें, क्योंकि करुणा देने के लिए आए। कहते हैं कि आपके बिना हमारा कोई नहीं है, ना ठेली और रंगा पाए। कोई आदमी आ रहा है ना प्रणाम करने के लिए, ऐसे करते फटो, तो ऐसे मत हमको करना, ना ठेली हो, अपने चरणों से ठुकरा मत देना हमको ऐसे। मैं दीनहीन होकर के बस आप ही हमारे एक बात को जीवन, दूसरा कोई हमारा नहीं, इसलिए हमको पैरों से ठुकराइए मत, आप हमारे ऊपर में करना कीजिए। संसार में जितने पतित अधम जितने हैं, दुराचारी कपटित धूर्त, उनमें सबसे मैं बढ़ा हुआ हूँ, इसलिए आपके कृपा का योग्य हूँ। बस ऐसी भावना से भजन करो। गौर प्रमानंदे,
एक भावना है सभी का, जीवों की स्थिति के संबंध में अनुभूति का, अपने अपने अनुभवों को जिन ग्रंथों में लिख करके छोड़ाया, उन्हीं को साफ प्रकाश है। यदि न्यूटन की लिखी हुई कोई पुस्तक यदि हम उसको सत्य मान करके आगे बढ़ते हैं, तो क्यों नहीं लाखों वर्षों की अनुभूतियों को हमारे ऋषियों ने उन वर्णों को जिन ग्रंथों में लिखा है वो क्यों नहीं सत्य हो सकते? जरूर सत्य। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इत्यादि जो है उसके पहले भी था, वो तो हाँ ये पहले पेड़ों में भी जीव हैं, जगदीश चंद्र बोस से पहले ये भी हम लोग मानते हैं, पेड़ पेड़ में बातचीत करते हैं, कोयल कोयल में बातचीत करती है, बंदर बंदर में बातचीत करते हैं,
तो ये सब चीजें पहले से हमारी चीजें हैं। इसलिए उन्होंने लाखों कोटि वर्षों के अनुभव को एक सत्य को समझकर उन्होंने लिखा, वो बात ठीक है। इसलिए उन्होंने ये कहा, ये संसार को चलाने वाला पर ब्रह्म पर तत्व एक है, उसको विभिन्न नामों से हम पुकारते हैं, अनुभव करते हैं विभिन्न, असल में हम भगवान को भूल करके इस जगत में आए हैं। ये हमारे लिए कारागार है, जेल खाना है, एकदम सीधा से आवाज जेल खाना। इस जगत में जो आया है दुख जरूर उसको भोग करना पड़ेगा ही, आज करो कल करो, दुखों से निस्तार नहीं। या प्यारा जो शरीर है इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी परम सत्य है। भगवान सत्य है कि नहीं सत्य है इसको तो पीछे बात रह दो, रख दो इसको, हमको मरना जरूर है ये परम सत्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमें दुख जरूर है, ये भी परम सत्य है। ये सुख दुख क्यों? भगवान को भूलने से दुख, भगवान को सेवा पाने पर उसे सुख, क्योंकि हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं, उसके हम अंश हैं। कहां से जीव आया, कहां से यह जगत आया? उन्हीं से आया, हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर में वो परिपूर्ण आनंदमय है। हम उनके अंश होने के नाते हम आनंद को खोजते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है चींटी से लेकर के ब्रह्म तक जो सुख नहीं खोजता, आनंद नहीं खोजता। एक चींटी भी देखो दीवारों पर रात में अंधेरी रात में इधर उधर घूमती है, किस लिए? कोई चीज पाने के लिए, खाने के लिए, सुख के लिए। ऐसा कोई प्राणी है जो सुख की आशा उसकी सदा के लिए दूर हो गई और वो जीवित रह सकता है? आदमी मरता है क्यों? जब देखता है कि अब सुख नहीं मिलेगा, अब दुख ही दुख भोगना है, आत्महत्या कर देता, सुसाइड कर देता। जब तक आनंद पाने की क्षीण भी आशा होती है तब तक वो मरना नहीं चाहता। इसलिए इस जगत में आनंद के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, किंतु सबके चाहने पर भी आनंद मिल जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। आज देखो राष्ट्र संघ है, जितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं जो कहे जाते हैं आजकल, उस संयुक्त राष्ट्र सभा में जगत को सुखमय बनाने के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हैं, किंतु कुछ नहीं। जो समस्या आज लाखों वर्ष पहले थी अभी वही समस्या। जेलखाना जब जेल के कैदियों को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें कष्ट देने के लिए है, तो पहले जो अवस्था थी अभी वही है, वो कष्ट देने के लिए है। हम भगवान से जब से बिछुड़े हैं तभी से हमारा यही हमारी अज्ञानता है इसके अंदर में अनुभूति नहीं हो रही, और जब तक उन्हें अनुभूति नहीं होगी तब तक सुख गारंटी है नहीं होगा। यही हमारे देशों की, देश के ऋषियों की, महर्षियों की उपलब्धि है, हम उनके अंश हैं। जब तक अंश से अंश नहीं मिलेगा सुख नहीं होगा। एक पत्थर को फेंक दो आकाश, पत्थर गिरेगा कि नहीं? कभी यदि कोई ऊपर में ठहरने का स्थान हो तो गिरेगा, क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, पृथ्वी अपने हिस्से को, अपने भाग को वो खींचेगी। किंतु बैलून में हवा भर करके छोड़ दो, वो ऊपर क्यों जाता है? पृथ्वी क्यों नहीं खींचती? आग जलाओ, धुआं उसका कहां जाएगा?
ऊपर।
क्यों? फ्लेम इसकी किधर जाएगी? पृथ्वी क्यों नहीं खींचती अपनी तरफ? आग यहां पर जलाओ, ऊपर जाएगी, और ऊपर जलाओ, ऊपर ही जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आग पृथ्वी का अंश नहीं है। पानी एक बूंद लो यहां पर गिराओ बाथरूम में, वो कहां जाएगा? नीचे नाली में। नाली से कहां जाएगा? बड़ी नाली में। और फिर कहां जाएगा? जमुना जी में। जमुना जी से फिर कहां जाएगा? प्रयाग में, गंगा में मिलेगा। और वहां से मिलकर के कहां जाएगा? बे ऑफ बंगाल में जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। फिर क्या होगा? सूर्य की गर्मी से वो भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर के मेघ बन करके, और फिर पानी बरसेगा, और फिर पानी बरस करके इन रोटेशन स्लाइड की
साइक्लिक ऑर्डर में वो फिर नहीं जाएंगे। कहीं भी पानी गिराओ भाप हो गया, भाप कहां जाएगा? बादल बनकर फिर नहीं रुक। अभी एक बूंद पानी गिराओ मिट्टी में सूख लेगा, कहां जाएगा? मिट्टी में जाकर के क्या होगा? या तो भाप बनेगा या अधिक कुछ होगा, पानी में मिलकर के फिर वो चला जाएगा। वो बिना पानी में मिले हुए उसकी गति नहीं। जैसे ढेला है जो बतलाया अंत में किसी न किसी तरह से वो मिलेगा। तो हम भगवान के अंश हैं, किसी काल से जुदा हो गए, जब तक उनसे नहीं मिलेगा कभी भी शांति नहीं हो सकती, ये गारंटी है, ये युक्ति है शास्त्रकारों की, नहीं होगा। इसलिए हम लोग लाख चेष्टा करें, लाख प्रयत्न करें, संयुक्त राष्ट्र लाख बनाएं, ये सुख पाने का रास्ता नहीं। तुलसीदास जी से ये कहते हैं, बारी मथे बरु हो यघृत सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपे। अपेल माने इधर उधर नहीं जा। पानी को बिलोने से भले ही घी निकल जाए, रास्ते की मिट्टी को पीसने से तेल निकल जाए, नहीं होता है। भले ही अंधकार सूरज को निकल जाए, बर्फ से बर्फ जो है ना, ये क्या
हिमचंदन प्रकट गुरु हो ना,
बर्फ से आग पैदा हो जाए, ये नहीं होता। आकाश में फूल खिल जाए, नहीं होता, सभी मान लेते हैं। किंतु बिनु भव निधि करेगा, संसार को कोई नहीं तर सकता, दुखों से पार नहीं पाएगा, आनंद नहीं होगा जब तक कि भगवान का जो अंश भगवान से नहीं मिल जाएगा। मिलना कैसे? मिलना जैसे ऐसे नहीं कि पानी में पानी मिल गया। क्या पानी में पानी मिल जाता है तो एक हो जाता है कि नहीं? नहीं होता। एक ग्लास पूरा भरा हुआ है, फुल ब्रिज, और उसमें दो बूंद पानी दो, क्या होगा वो पानी?
दो बूंद से अधिक कर दिया जाएगा, पी जाएगा।
एक नहीं होगा, एक होता तो रह जाता। एक ग्लास पानी है पूरा, उसमें एक ग्लास और मिला दो, एक कहां हुआ तो गिर गया। इसलिए कोई चीज में कोई चीज नहीं मिलता है, पहले समझो। जैसे हम लोग 500 आदमी यहाँ पर मिले हैं, ऐसे मिलेगा भगवान के साथ, उनकी सेवा करके आनंद पाएगा। मिल करके एक कभी नहीं होगा। दूध में पानी मिलाओ तो पानी दूध नहीं हो जाएगा। पत्थर के बहुत से टुकड़े एक जगह पड़े हैं, एक और थोड़ा सा मिला दो, एक नहीं हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से भगवान ब्रह्म में कोई मिल करके एक नहीं होता, एक और एक, एक नहीं होता कभी, दो होगा, चार और चार, एक नहीं होता। इसलिए कोई भी भगवान में मिलकर के एक नहीं होता, पहले चोरी को समझना चाहिए। भगवान में मिलकर के भगवान की सेवा करते हैं, जैसे वृंदावन में लाखों कोटि जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं, लाखों कोटि गोपियां कृष्ण को आनंदित कर रही हैं, कृष्ण उनको आनंदित। ये है मिलना। मिलने से प्रेम होता है, प्रेम का आदान प्रदान में सुख है। जहाँ प्रेम नहीं है लाखों आदमी मिलते हैं। कलकत्ते में जाइए देखिए, लाखों आदमी एकदम खींच रहे हैं, एक आदमी मर जाता है कोई पूछता नहीं है कौन मरा क्या हुआ, वो सीधे रास्ते मिल जाता है। उसी के बीच में किसी ने एक किसी को चाकू मारा, वो गिर गया, कोई ये नहीं पूछने आता कि कौन मारा क्या हुआ, बस थोड़ा सा देख लेंगे बस चले। ये संसार इसी तरह, इसलिए हम लोग अबोध हैं, बालक हैं, बालक एकदम। बालक किसको कहते हैं? मूर्ख, अज्ञान को। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर में कृपा करें, हम अज्ञानी हैं, हमारी टोली में आ जाएं। देखिए प्रार्थना करेगा, हमारी बालक की टोली में, हम मूर्ख, हम अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, उनकी टोली में आएंगे और हम लोगों को भी अपने में लेकर के और आनंद प्रदान करेंगे। यही आनंद का तरीका है।
फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ हमारी बाल तुम बंसी बजाते हो सुना है बंसी बजा जाओ हमारी बाल टोली में कि तुम बंसी बजा जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया
आठवां वर्ष के बच्चे सप्त कथाओं को लेकर गोचारण के लिए अभी गैया नहीं चरा रहे, अभी बछड़े चरा रहे, बछड़े और बछड़ियां छोटी छोटी यमुना के किनारे एक भांडीर बन, भांडीर बन, उसी बन में यमुना के किनारे उसकी डालियां यमुना के इस पार से उस पार चली गई हैं, क्रॉस करती हैं, उस पर चढ़कर खेल रहे हैं, कभी उधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, कभी आंख बंद करने के लिए या कभी कुछ कर रहे हैं। खाने में इतने व्यस्त हो गए सब कि वो चढ़ते 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 गायें वो चल पड़ी, जो कृष्ण के सामने मुख रखती थी आज कृष्ण के तरफ में पीछा करते हुए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर घासों को देखकर ललचती हुई चढ़ने के लिए आगे बढ़ी। चढ़ते 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 जब वहां जाती देखती और आगे में सुंदर घास उसको छोड़ देती आगे बढ़ जाती, इस समय आगे और हरियाली दिखती उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाती। गाय का नाम है गो, गो माने क्या इंद्रिय, हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां यहां पर गाय बनी है। चराने वाले कौन है, हमारी इंद्रियां बट में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए संसार की विषय जो है ये हरी घासें हैं। विषय किसको कहते हैं, विषय किसको कहते हैं, संसार में जो सुख है, क्या सुख, दिन भर आदमी परिश्रम करके एक मनुष्य आदमी पुरुष दिन भर परिश्रम किया, शाम होते ही कहां चलता है, आते ही यदि पत्नी ने बड़े मीठे रूप में उसका स्वागत किया, पानी दिया, भोजन दिया, बैठाया, प्रेम से बात की, वो दिन भर का वो परिश्रम सब भूल जाता है। छोटा सा बच्चा गोदी में है, वो पिताजी को देखते हैं, पिताजी पिताजी जहां दौड़ा पिताजी की तरफ में, थके मांदे आए हैं, बच्चे को गोद में लिया, उनका परिश्रम दूर हो गया, बस लाल प्यार करके। संसार का जो कष्ट है उसमें प्रशमित हो जाता है। यह है विषय, स्त्री पुत्र परिवार पति, उसमें घर है, उसमें कुत्ते हैं पाल लिया है ना, गैया है, ये सब विषय है। हमारा मन उसी की तरफ में चल रहा है, और असल में जो भगवान है विषय, मूल विषय को छोड़ दिया और भगवान को भूल करके इन सुखों की तरफ में हमारा मन ये गैया है, भटक गैया है, कृष्ण को भूल करके हमारी इंद्रियां संसार में लगी हुई हैं। यह है गोचारण का, और इंद्रियां उधर में सुख में जा। अब होता क्या है, कृष्ण को छोड़ करके पीछे जब गाय बढ़ी, एक घास से दूसरी घास अच्छी लगी, माने क्या, जो हमको अभी उपलब्ध सुख है उससे हमारा पूरा पेट नहीं भर रहा, उसे असंतोष पैदा हो जाता है। हमारा पहले मकान छप्पर का था, अब चाहिए क्या, सुंदर सजा सजाया हुआ मकान। एक तल्ले से नहीं होगा, 121 तल्ले का हो, सीढ़ियों से काम नहीं चलेगा।
लिफ्ट
साधारण लिफ्ट से काम नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम हो, उसमें फैन चलता हो, और यदि बीच में कहीं बिजली फेल हो गई तो इसे जनरेटर की व्यवस्था रही, और एक जनरेटर खराब हो गया तो चल रहा है। ये सब विषय हैं, आप लोग आगे बढ़ाए तो दूसरे आएंगे तो पीछे। संसार में मनुष्य अपने सुखों से तृप्त नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। घर में अपनी पत्नी है सुंदरी और सब प्रकार से गुणी है, बड़ी भोली भाली है, तो उनसे मन नहीं भरता। डिस्को डांस चाहिए, नाइट क्लब चाहिए, हमारी स्त्री दूसरे से मिले, हम दूसरे की स्त्री से मिले, चावल दाल रोटी से पेट नहीं भरता, अच्छा नहीं लगता, हमको अंडे चाहिए, मीट चाहिए, भरता नहीं पेट, तृप्त नहीं होता। एक लव मैरिज किया, दो दिन के बाद में वो टूट गया, तीसरा किया, कैनेडी ने शायद 27 मैरिज की, वो कैनेडी की स्त्री थी ना। वेस्टर्न कंट्रीज में यही सब चीजें हैं, आज भारतवर्ष में भी वो आमदनी होने लगी, वहां से अब आ रही है धीरे धीरे। इस तरह से ये विषय हैं, इनसे कभी भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग भभक होती है, वो शांत नहीं होती, तो ये कामना की आग विषयों के भोग से नहीं थमेगी, रुकेगी नहीं, और चाहेगी नई नई चीजें चाहती। अभी सुना जी, एक 90 या 100 वर्ष का बूढ़ा अभी विवाह रचा है, ये दिल्ली का ही कोई कोई हनुमान गुरु या को बतलाओ, उनके शिष्य लोग भड़क उठे, जा रहे बेटा जवानी में विवाह करता है। तो मन की ये मानता नहीं, मन बूढ़ा नहीं होता, इसलिए ये सब इंद्रियां हैं भगवान को छोड़ करके बढ़ रही है, जितना ही आगे बढ़ेंगे उनको दुख होगा, तृप्ति नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक औषधि निकाली गई संतोष की, जो है उसे संतुष्ट रहो, जो प्रभु ने दिया उसे संतुष्ट रहो। तुम आया भगवान का भजन करने के लिए, आया था हरि भजन को उठन लगे कपास, भजन तो हुआ नहीं, कपास उठने लगे। इसलिए कहते हैं कि वो गाय चली, कृष्ण भी खाने पीने में उनके सखा लोग मत्त हैं, और उनको छोड़ करके चली गई, एक जंगल से भटकती हुई दूसरी जंगल में, और घाटों को खोजते हैं नई नई घाट, बहुत आगे बढ़ गए, मरुभूमि में पहुंच गए। यमुना में जब जाएंगे ना, मथुरा वृंदावन गोकुल की तरफ में पिहड़ बालुका राशि से बना हुआ बड़ा भयंकर वो सब होता है, उसमें मुंज बंद में होता है, गर्मी के दिनों में एकदम सूख जाता है, परस्पर कंडों को लगने से उसमें आग लग जाती है, और उसके अंदर में जो पड़ गया सभी समाप्त हो जाते हैं, एक सेकंड के अंदर में चारों तरफ में हजारों मील में वो फैल जाते हैं। ये है दावाग्नि। तो वो जब गायें गईं, एक मुंजबन से दूसरी मुंजबन में चलती हुई, अपने रास्ते को भूल गई, बहुत भीड़ रास्ता, और कृष्ण से बहुत दूर निकल गई, यमुना से भी बहुत दूर निकल गई, जहां पर पानी नहीं है, हरियाली नहीं है, कुछ केवल बालू बालू, और तपती हुई जेठ की दोपहरी चिलचिलाती हुई धूप, बालू भी एकदम तप्त हो गई, जैसे भड़भूजे के यहाँ होती है ना, उसमें थोड़ा सा बालू निकाल करके दे दो तो क्या हो, फट फट फूट जाएंगे सब, उसमें मकई जैसे दे दो तो मकई कैसे फूटती है, एकदम इतनी बड़ी हो जाएगी फूल करके, समाप्त हो, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। ऐसे वो गायें झुलसने लगी। सखालुओं ने देखा, भाई गायें किधर गईं, हमारा गोधन ही नष्ट हो गया। इसलिए गायें, ये सखा लोग देखे, कृष्ण से नहीं पूछा तो काम ही बन जाता। कृष्ण और बलदेव जी से कुछ नहीं पूछा और वो बिना पूछे वे चल पड़े। कृष्ण बैठे हैं, भाई पूछ तो लो उनसे, गाय कहाँ गई, कैसे आएंगी, नहीं हम भी कृष्ण को भूल करके सुख खोज रहे हैं, कृष्ण है कहाँ, दूर नहीं है, यहीं पर है, किंतु उनसे नहीं पूछते हैं। वो सलाह देते हैं, उनकी सलाह को मानते भी नहीं है। वो कहते हैं ये काम मत कर, हम उनकी नहीं सुनते, यदि मानते तो कुछ काम हो जाता। तो प्रभु बैठे हैं, उनसे नहीं पूछा, वो भी चल पड़े। वो भी एक वन से दूसरे वन में देखा, जे गायों का पैर ये इधर में गया है और हरी हरी घासों के जो टुकड़े हुए हैं कुछ गिर गए हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़े। वो भी मुंजवन में एकदम खो गए, रास्ता नहीं मिला। जब जाते हैं तो ऐसे कर करके जाते हैं, जब वो बंद हो जाता है तब तो दिखता नहीं आस पास। आप लोगों ने मुंज देखा हो तो समझेंगे, तो नहीं समझेंगे। वो भी गायों के रास्ते से ठीक वहीं पर पहुंचे जहां गए। अब तो जेठ की दोपहरी, चिलचिलाती हुई धूप, रेती भी खूब गर्म हो गई है, पैर जल रहा, प्यास से प्राण फटने लगे। और इतने में कंस का एक दूत देखा, ठीक है अब घेरे में आए, आज तक ये इनको मार नहीं सके हम, इनको मारने से तो कृष्ण अपने आप मर जाएगा, इनके प्राण है कृष्ण। आग लगा दी, आग लगते ही उसका रथ भी आ जाता है। रथ मैंने क्या,
हवा,
अपने आप बिना हवा, जहां गर्म हुआ हवा यहां से उठी, आग लगी, वो ऊपर जाएगी, उसको भरने के लिए हवा आएगी। इस तरह से हवाओं में संचार हो जाता, हवा बड़ी जोर से चलने लगती है और आग उन चिंगारियों को लेकर के यहां से वहां क्षण भर में चारों तरफ में फैला दी। अब चारों तरफ में आग लगती है, गाय डकारने लगी, सखा लोग डकारने लगे। हमारी यह स्थिति यही है, अभी नहीं यतने हम बेहोश हो गए हैं, संसारिक दुखों को अब नहीं समझ रहे हैं, एकदम बेहोश की स्थिति है, सेंसलेस हो गए हैं। आग चारों तरफ से घेर लिया, जलने लगी, अब एक क्षण में जलने वाली है। सखाओं ने देखा, जब हम तो मरे, अरे भैया कृष्ण कहाँ हो, राम कहाँ हो, बड़े जोर से वो चिल्लाने लगे। एक शब्द ही है जो प्रभु को बुला सकता है, यदि दुखों में हम यदि प्रभु को स्मरण करें, दुख हवा की तरफ में उड़ जाए, बादलों की तरफ छट जाते हैं। कभी दुख हो, असहाय हो जाएंगे, हम लोग का जो ये मंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आंख बंद कर दीजिए और अंतर्मुखी कीजिए और प्रभु को सुनाइए, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हाथों को उठा दीजिए। अब हमारा कोई दूसरा नहीं है सहारा, और उनको पर देखिए ये एक क्षण में आपका दुख कहाँ चला गया, नहीं है विश्वास, देखो करके जरूर देखो, गारंटी है। अभी दुख से हमारे नहीं निकलते हैं, जिस दिन दुख से प्रभु का स्मरण हो जाएगा। तो उन लोगों ने ज्यों ही उनको बुलाया त्यों ही प्रभु तो कहीं दूर है नहीं, क्षण मात्र उनके साथ है, भय न मत करो, निर्भय हो जाओ, मैं आ गया। पहले क्यों नहीं बुलाया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, हमें छोड़ करके क्यों आए, ये हमारी दशा है। कृष्ण ने कहा आंखें बंद करो, तो उन्होंने कृष्ण के कहने से आंखें बंद, सखा है ना, किंतु ये सखा होने पर बड़ा तेजी है, इसमें मंत्र कुछ जानता है, और मंत्र किसी को दिखा करके नहीं कहा जाता, सुना करते तो मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कन्हैया ने कहा आप मंत्र को विषय कर। कन्हैया ने सोचा क्या, एक बार मैंने मिट्टी खाई और सखाओं ने मैया से कहा मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई, तब उन्होंने क्या किया मुंह कैसे खोला और मैया हमको मारने के लिए आई, ये मट्टी खाता पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा तुम्हें बचाना, इसलिए कान उठा करके उस ब्रह्म जो कृष्ण है उनका कान मल दिया, कृष्ण करने लगे।
फिर कहीं यदि कहा जैसे आग खा लिया, उस समय तो मिट्टी खाया था, कोई बात नहीं थी। आज सबके सामने आग खाएंगे तो या मैया की नालिश करेंगे, मैया हमें कुछ धमकाएगी, कुछ करेगी, भैया तुम आंख बंद हो, मैया से मत कहना कि मैंने कुछ किया। आंख बंद किया और ऐसा या और सब जितना आग था वो बर्फ बनकर तुम कर। जब उनका एक छोटा सा तुच्छ सेवक शंकर जी समुद्र से निकले हुए बीज को एक सेकंड में पान कर लिया तो उनका तो कुछ गला भी
मिला,
इनका कुछ नहीं होगा। इसके बाद में कहा जी आंख खोलो, आंख खोलो तो देखा क्या, वहीं पर मंडली बांधे हुए भांडीर बट के नीचे सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और गायें बड़ी आराम के साथ में जमने के सुशीतल छाया में बैठी हुई पानी पी करके और पागुर कर रही है। पागुर जानते हैं, गैया जुबाली चबाती है बड़ी आनंद के साथ। मैंने देखा, ये स्वप्न देखा क्या जी, मैं आग में जल रहा था। गाय सोच रही अरे भाई मैंने क्या स्वप्न देखा ना, क्या किया, ये सूच है सत्य के जी। ऐसे ऐसे कृष्ण की शरणागति होने पर उनको जब पुकारेंगे ना तो देखेंगे आप खोल करके, अरे कहां गुरु वृंदावन में बैठे, हम कभी भी ये संसार में थे, इसका भान भी नहीं रहेगा। ये सत्य खोजी हुई हमारे, इसलिए प्रमाण स्वरूप में भागवत में लेकर के रख। संसार झूठा हो सकता है सभी, भागवत कभी भी नहीं झूठा, ये झूठ विश्वास के साथ। आज ऐसे ही एक महान भक्त का जन्म आज हुआ था, हरिदास ठाकुर जी उनका नाम, महाप्रभु जी के परिकर थे, 300,000 हरिनाम करते थे डेली। एक बच्चा हमसे कह रहा है महाराज जी दो बार मैं करता हूँ तो थोड़ा सा उसमें से कम कर दूं तो कोई हर्ज है। अरे कहो जैसे वो करते थे कितना, 300,000 का कितना हो गया, कितना राउंड,
192
राउंड करते थे, 192 ना? कितना घंटा होता है इससे, बड़े धीरे धीरे करते थे ऐसे, हरे कृष्ण 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 बस, ऐसा नहीं हरे कृष्ण एक राउंड हो गया, ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम,
जिनकी आवाज कृष्ण के कानों तक पहुंच सके, ऐसे करुण हृदय से ऐसे वो करते थे। रात में कभी सोया कभी नहीं सोया, खाया क्या, कभी खाया कभी चना कभी उही मना, दिन रात भगवान के इसमें लगे रहते थे, इस तरह से हरिनाम करते थे। उनको माया ने बहुत मोहने की चेष्टा की, बचपन से बड़े सुंदर सुकांत और सुगठित शरीर था जैसे सुखदेव गोस्वामी का, माया उनको स्पर्श नहीं कर सकी। कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी ने कृष्ण की लीला में कुछ विघ्न डाला, उस समय में ब्रह्मा जी को जब मालूम हुआ उनके गैये बछड़े चुरा लिए, सखाओं को चुरा लिया, उसे जो अपराध हुआ उन्होंने सोचा कि अब अपराध क्षमा कराऊं, स्तव स्तुति की, किंतु कृष्ण उनके तरफ में देखा भी नहीं, क्षमा किया कि नहीं ये पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि इस जन्म में हम मुसलमान घर में आएंगे, खूब नीच कुल में, और उस समय इनको पुकारेंगे, इसलिए मुसलमान कुल में आए। और कोई कहते हैं ये प्रहलाद महाराज जी हैं, प्रहलाद महाराज जी जैसे कष्टों को सज्ज किया इन्होंने सज्ज किया। भक्त लोग कहते हैं कि ये प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा दोनों के मिलित शरीर में, दोनों मिल करके इस शरीर में आए महाप्रभु जी के परिकर होकर। जिस आदर्श से उन्होंने हरिनाम किया, जिस तरह से उनकी जीवन चर्चा थी, महाप्रभु के प्यारे अंतरंग भक्त थे, किस तरह से करते थे, उनके जीवन के चरित्र के हम संबंध में बतलाएंगे, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हमको कैसे नाम करना चाहिए, कैसे अपने नियम बनाना चाहिए, किस तरह से भगवान मिलते हैं। अभी जिस प्रकार से हम चल रहे हैं ना, बहुत वर्षों लग जाएंगे। एक समय की बात है, नारद जी कहीं जा रहे थे, एक व्यक्ति ने देखा कि आज महाराज आप कहाँ जा रहे, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छी बात है, एक बात करना है, नारायण से पूछना, हमारी एक
को मिलेंगे। हंस करके कहा, एक इमली के पेड़ के नीचे जिसके अंदर नीचे रह करके वो भजन करता है मेरा, हरिनाम करता है, वो इमली का पेड़ है बहुत विशाल, उसमें जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद में हमको पाएगा। नारद जी दुखी होकर के लौट रहे, सोचा जब उस रास्ते से नहीं जाएंगे नहीं तो पूछेगा तब मैं क्या उत्तर दूं, इसलिए कुछ बच करके निकल रहे थे, किंतु वो उनके चक्कर में था, इसलिए वो आते ही चार देख लिया जो आ रहे हैं तो वहीं पर पहुंच गया। हमारा प्रश्न उनसे पूछा तो क्या उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने उत्तर दिया, जिस इमली के पेड़ के नीचे तुम भजन कर रहे हो उतने जन्मों के बाद में तुम उनको मिलोगे। तो बहुत आनंद की बात है, आनंद से वो नृत्य करने लगा, नाचने लगा। अब तो हमारा स्थिर हो गया जो इतने जन्मों के बाद में इमली के पत्ते यदि गिना जाए तो वो उसको गिना जा सकता है, समय लगेगा किंतु गिना जा सकता है। तो अब मैं गिनती के अंदर में आ गया, इस इतने जन्मों के बाद में तो हमारा जरूर हो जाएगा भगवान का मिलन, इसलिए आनंद के बारे में नित्य करना। जब एकदम आनंद के बारे में नित्य करना, इतने में देखा जी प्रभु वहां आ गए। नारद जी ने कहा जी हमको झूठा क्यों बनाया आपने आपने कहा जी इमली का जितने पत्ते हैं उतने, अरे तुम तो अभी तुरंत आ गए, एक पत्ता की भी अभी नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा आप आ गए। तो वो जिस तरीके से वो कर रहा था भजन, उसे तो इतने करोड़ जन्म लग जाते, किंतु अब तन्मय होकर के आनंद से हमको जिस प्रकार से पुकारा मैं ठहर नहीं सका। तो हम भजन करते हैं प्रभु नहीं मिलते हैं, इतना दिन हम दो अढ़ाई वर्ष तक मैं उनके लिए किया और वो नहीं आए और हमको दुख में ही फेंकते चले जा रहे हैं। प्रभु कुछ आवश्यक ऑपरेशन भी करते हैं, ऑपरेशन संसार में जितने ऑपरेशन करने वाले हैं उनसे वो जरा कुछ निराले हैं। इस ऑपरेशन से मर सकते हैं, कष्ट होगा, और उस ऑपरेशन से क्या होगा, हमारा रोग जरूर ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम उस ऑपरेशन को सह नहीं पाते, थिएटर से उसको हम बाहर कर हम भाग करके चले आते, हम नहीं कराएंगे। तो उस ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए, ऑपरेशन है दुख कष्ट थोड़ा सा जीना। इस तरह से कुछ अधिक रूप में तन को मन को वचन को लगा करके प्रभु का स्मरण होना चाहिए, उनका उसी प्रकार से कीर्तन होना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी इसके आदर्श हैं, उनके संबंध में थोड़ा सा आप बोलेंगे कुछ, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा बीच बीच आप लोग बोलिए तो बोलो। साधारण एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, उस गांव में हिंदू लोग थे कुछ, उनके संपर्क से बचपन से ही वो ये महामंत्र जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। जब कुछ बड़े हुए तो उनके नाम के प्रति निष्ठा देकर के हिंदू लोग भी मुसलमान भी उनके चरणों में झुक जाते। अभी अभी प्रारंभिक स्थिति में किस प्रकार से राजा का उनके प्रति ईर्ष्या हुआ और उनको लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए जो किया आप लोगों ने सुना संक्षेप में। हरिनाम का इतना प्रभाव है, विशेष करके यदि निर्मल चित्त वाले जो कि इन सब चीजों को मानते हैं और भक्ति पूर्वक जो दिन नाम करते हैं तो उसका इतना प्रभाव है, इतना अधिक प्रभाव जिसकी शास्त्र में कहीं नहीं वर्णन किया गया। संसार में किसी चित्त को बांधने के लिए प्रभु ने ही स्त्री और पुरुष बनाए परस्पर परस्पर को मोहित करने के लिए। ये कल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग हाथी बाघ सब में ये चीजें हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं रूप इत्यादि के द्वारा, किंतु हरिदास ठाकुर के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। विश्वामित्र को हम लोगों ने सुना है, नारद ऋषि की बात हम लोगों ने सुनी है,
शंकर जी को भी सुना है, किंतु हरिदास ठाकुर जी भगवान के एकाश्रित रहने के कारण हरिनाम के प्रभाव से बच गए। और यहाँ तक कि वो जो वेश्या थी वो उसका चित्त पवित्र हो गया, अपने जो संग्रह किया था अपने उन रुपयों से उन सबको वो दान दे दिए और केवल एक कपड़ा पहन करके उनके पास में आई और उसको तुलसी की सेवा उन्होंने दी और कान में दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। आप कहीं तुमको जाना नहीं है, उसके मन में शंका आई यदि न जाऊं तो भोजन कहां से करूंगी। कहे तुम भोजन की चिंता मत करना, उनके बिना बोले ही बोले भोजन तुमको इतना आएगा अधिक जो तुम खा नहीं सकेगी, किंतु तुम अपने भोजन जितना करते उसे इतना भी अधिक मत रखना। एक रोटी खाती है एक ही रोटी रखना, सवा रोटी अपने लिए न रखना, कोई भी चीज संग्रह मत करना अपने पास में। कुछ दिनों के बाद में वहीं पर बैठ करके तुलसी की रोज सवेरे परिक्रमा करती, पानी देती, गंगा पारती थी और बस उनकी परिक्रमा करके बस बैठ जाती। वो भी धीरे 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 3 लाख हरिनाम करने लग गई। उसके बुरे संस्कार दूर हो गए, देश विदेश से लोग उनके चरणों के दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, बड़े बड़े महात्मा लोग, साधारणों की तो बात किया, भगवान का अनुभूति की उसको हुई और भगवान को प्राप्त हो गए। हरिदास ठाकुर जी ऐसे थे, चिंतामणि थे, पारस एकदम अपने समान ही, उसको एकदम जैसे पारस होता है ना लोहा को सोना बना देता है, पारस नहीं बनाता, किंतु ये पारस ऐसे हैं जो अपने समान उसको बना दिया। हरिनाम में ये ताकत है उन्होंने दिखलाया। वो जिस कंदरे में वहां पर रहते थे जहां पर वेश्या को उन्होंने उद्धार किया, उसमें बड़ा भारी अजगर विषैला सर्प रहता था काला। लोगों ने कहा जी हरिदास ठाकुर जी आप उसमें मत रहो। कहा जी नहीं, हमारे लिए यही उचित है, गंगा के किनारे रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे। तुलसी का पौधा रोप दिया और उस कंदरे में रहते थे, कंदरा माने ऊंचा टीला, और उसी में कुछ एक भीतर में गहरा तक कोई माद होता है जैसा गड्ढा जैसा, उसी के अंदर में रहते थे, गुफा इसको कहते हैं। एक आदमी बड़ी मुश्किल से उसी में सांप रहता था। हरिदास ठाकुर उसके भीतर में प्रवेश कर गए, सांप से डरे नहीं, विषय लोगों से डरते हैं, जो विषय में आ सकते हैं उनसे डरेंगे, सांप भालू बाघ से नहीं डरते, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये बिगाड़ देंगे लोक परलोक नष्ट कर देते हैं विषय लोगों का संग। किंतु बाघ भालू अधिक से अधिक आत्मा शरीर को खा जाएगा, आत्मा पर उसका कुछ प्रभाव नहीं, फिर दूसरे जन्म में फिर जन्म लेकर के भजन करेगा। इसलिए दुष्ट लोगों का संग, विषय लोगों का संग, जो हरि भजन नहीं करते हैं इनका संग नहीं करना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति जो भगवत भजन की है उसको भी नष्ट कर देंगे। तो वो सांप देखा जो हरि नाम करने लगे, उसमें से धीरे धीरे निकला दो एक दिन के बाद में और कहीं चला गया। हरिदास ठाकुर उसी में रह करके भजन, सांप भी वहां से देखो अपनी वही साबित्री छोड़ करके वहां से चला गया। हरिनाम से पहला इसका यह है कि विघ्न बाधा जितने हैं दुख है ये सब दूर हो जाते। हरिदास ठाकुर जी उस गांव को छोड़कर के फुलियार में आए, यहां पर रहते थे उसके पास ही में अद्वैत आश्रम, उसमें मुसलमानों की संख्या अधिक थी बंगाल में और वहां पर नवाब होते थे जैसे सिराज दौला, मीर जाफर इत्यादि सब, ये बंगाल के ही ये सब है। तो उसमें मुसलमानों का राज्य था, दिल्ली में बादशाह की यहाँ पर राजधानी थी और इसके अंदर में ये सब बंगाल में बड़े बड़े नवाब इत्यादि हुआ करते, नवाब माने गवर्नर जैसे, उनके अंदर में वो सब रहता था। मुसलमानों को पता लगा कि ये हिंदू मुसलमान होकर के हिंदुओं का ये व्यवहार कर रहा है, भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण राम राम करता है, इसको पकड़ लाओ नहीं तो ये सब मुसलमान कुछ दिनों में हिंदू हो जाए। हम लोग बड़ी मुश्किल से कितने लोगों को काट फाट करके और उनको हिंदू से मुसलमान बनाया, कितने हिंदू लोगों को किस तरह से स्त्रियों को जबरदस्ती पकड़ करके उनको मुसलमान बनाया, सामने से पकड़। आप लोग अलाउद्दीन इत्यादि की बातें सुनेंगे, हिस्ट्री में पढ़ी होगी कैसा उन्होंने किया, औरंगजेब को देखा जी कैसा किया, लाखों लोगों को मारा पीटा, जिन लोगों ने कबूल किया जाए से तो ठीक है, नहीं तो मार काट करके कर लिया। जितने बड़े बड़े वृंदावन में, मथुरा में इत्यादि मंदिर थे, सबको ध्वंस कर दिया, उसको जगह मस्जिद राम के जन्म स्थान इत्यादि में कर दिया। हिंदू लोगों में ये सब नहीं था, तो वो मुसलमान होकर के ये हिंदू का नाम कृष्ण कृष्ण राम राम करता है, उसको पकड़ लियो। उसे लोग पकड़ करके ले गए काजी के यहाँ, काजी माने न्यायाधीश, न्यायाधीश के पास में ले गए। मैंने कहा कि तुम पाक मुसलमान कुल में तुम जन्म लिया और हिंदुवानी कर रहा है तुम, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये कहा नहीं न तो वो हो जाता अच्छा। वो कहा जो हिंदुवानी करता है तू, पवित्र होकर के तुम नापाक है, पाक नहीं, तुम अभी छोड़ो आने तो तुम्हें दंड देंगे। यानी कि क्यों मुझे दंड देंगे, मैंने क्या गुनाह किया? गुनाह तो ये किया जो मुसलमान कुल में जन्म होकर के तुम अपवित्र नाम कर रहा है। उन्होंने कहा जैसे यदि राम रहीम एक ही आज जैसा आप कहते हैं, हिंदुओं से तो कहते हैं राम रहीम एक है इसलिए रहीम का भजन करो, राम का भजन छोड़ो, एक ही बात है। तो राम रहीम एक ही है तो मैं